नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंध संख्या 8 अध्याय संख्या 19 श्लोक संख्या 35 से 37 तक। 37वां श्लोक है, मेरे पीछे दोहराइए। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पञ्चधा विभजन वित्तं इह अमूत्र च मोदते। धर्माय यशसे अर्थाय स्वजनाय च पञ्चधा विभजन वित्तं यः मूत्र च मोदते। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पञ्चधा विभजन वित्तं यः मूत्र च मोदते। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पञ्चधा विभजन वित्तं यः मूत्र च मोदते। यश से अपने यश के लिए, अर्थाय अपना ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए, कामाय इंद्र तृप्ति के हेतु, स्वजनाय च तथा कुटुंबी जनों के पालन पोषण के लिए, पंचधा इन पांच भिन्न भिन्न लक्ष्यों के लिए, विभजन बांटते हुए, वित्तम अपने संचित धन को, यह इस संसार में, अमूत्र अगले संसार में, च तथा मोदते भोग करता है। अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की पीछे दोहराइए। अतएव जो ज्ञानी है उसे चाहिए कि अपने संचित धन को पांच भागों में विभाजित कर दे, धर्म के लिए, यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए तथा कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए। ऐसा व्यक्ति इस लोक में तथा परलोक में भी सुखी रहता है। तात्पर्य पढ़ता हूँ, छोटा सा तात्पर्य है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। रूपा जी लिखते हैं, शास्त्रों का आदेश है कि यदि किसी के पास धन हो तो उसे पांच भागों में विभाजित कर देना चाहिए। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग यश के लिए, तीसरा ऐश्वर्य के लिए, चौथा इंद्र तृप्ति के लिए और पांचवा भाग कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए। किंतु वर्तमान समय में सारे लोग ज्ञान से विहीन होने के कारण अपना सारा धन परिवार की तुष्टि के लिए खर्च करते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने अपने ही उदाहरण से हमें शिक्षा दी कि 50% संचित धन कृष्ण के लिए, 25% अपने ऊपर तथा शेष 25% अपने कुटुंबी जनों पर खर्च करना चाहिए। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना होना चाहिए। इसमें धर्म और सदा काम सम्मिलित होंगे, किंतु क्योंकि उसके परिवार के लोग भी कुछ लाभ की आशा रखते हैं, अतः अपने संचित धन का कुछ अंश उन्हें भी देकर संतुष्ट करना चाहिए। यही शास्त्रीय आदेश है। ओम अज्ञान निमरंधस्य जयविंशनकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपद्मनाभं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगणकमात्रान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेषाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 35 अनुवाद पढ़ता हूं। तुम निश्चित रूप से अपना वचन पूरा करने में असमर्थ होगे और मैं सोचता हूं कि अपनी इस असमर्थता के कारण तुम्हें नरक में शाश्वत निवास करना पड़ेगा। श्लोक संख्या 36। विद्वान व्यक्ति उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिससे किसी की जीविका खतरे में पड़ जाए। दान यज्ञ तप और सकाम कर्म वही कर सकता है जो अपनी जीविका कमाने में पूर्ण सक्षम हो। जो अपना ही भरण पोषण न कर सके उसके लिए कार्य असंभव है। श्लोक संख्या 37। अतः जो ज्ञानी है उसे चाहिए कि अपने संचित धन को 5 भागों में विभाजित कर दे। धर्म के लिए, यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, इंद्रजुक्ति के लिए तथा कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए। ऐसा व्यक्ति इस लोक में तथा परलोक में सुखी रहता है। चर्चा चल रही है दो लोगों की। जो बात कही गई है कि तुम निश्चित रूप से अपना वचन पूरा करने में असमर्थ होगे, ये कौन कह रहा है? शुक्राचार्य जी, क्योंकि असुरों के गुरु। अगर आपने आसुरी संपदा और दैवी संपदा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है भगवद गीता का, वो पढ़ा है और उसमें जो है जो दैवी गुण है पहले से लेकर तीसरे श्लोक तक दिए गए हैं, भगवान बता रहे हैं, और जो आसुरी चर्चा उसके बाद सारे श्लोकों में है, पहले 6 गुण बताए हैं उसके बाद उनको आस्ता 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 करके एक्सप्लेन किया है, तो कितने लोगों ने 16वें चैप्टर को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ा, कंसंट्रेट कर लिया। और कितने लोगों ने पढ़ने के बाद ये फील किया है कि हम में भी कुछ आसुरी गुण है कि नहीं, मैच्योरिटी। जब हम यहां डिवोशनल सर्विस में बैठे हैं तब हम फील करते हैं कि हमारे अंदर आसुरी गुण हैं, तो जो बाहर घूम रहे हैं जो डिवोशनल सर्विस में नहीं आए हैं 100% आसुरी। असुर शब्द जो है उसकी उसका लिटरल मीनिंग क्या है, मतलब शास्त्रीय मीनिंग क्या है, असुर जो भगवान के द्वारा, बोलो, जो भगवान के सुर में सुर ना मिलाए वो असुर है। ठीक है, कहने का अर्थ निकल रहा है, मीनिंग आ रहा है, मीनिंग आ रहा है। असु शब्द जो है वो कहते हैं प्राणों को, प्राणों को, प्राण। और जो प्राणों का पोषण करता है अर्थात तिंद तृप्ति में लगा रहता है, कामनाओं के जाल में उलझा रहता है, वो असुर है, वो असुर है। यही बात यहां आ रही है, तृप्ति चर्चा आ रही है। अब आती है बात नंबर दो। मैं बड़ा धार्मिक हूं जी, मैं रोज मंदिर जाता हूं, रोज मंदिर जाने के बाद ही मैं अपने काम पे जाता हूं, रोज घर के अंदर मैं आरती करता हूं, रोज घर के अंदर मैं भगवान को प्रणाम करता हूं, भोग लगा के नहीं खाता, प्याज लहसुन खाता हूं, शाम को दारू भी पी लेता हूं, चलता, परंतु भगवान के प्रति मेरी आस्था है। क्या करते हो जी मंदिर जाके, घर में आरती करते हो तो क्या करते हो? भगवान से प्रार्थना करता हूं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे। जब तुम भगवान के दर्शन करने गए हो तो उस वक्त तुम्हारे मन के अंदर भगवान है कि सुख संपत्ति है, क्या कामना है, डिजायर है ना? तो तुम जो है उस डिजायर के जाल में उलझे हुए हो, अर्थात डिजायर लेके भगवान के पास जाते हो और तुम्हारा मन भगवान में न होके उस डिजायर में है, तो तुम धार्मिक हुए। एक्चुअल धार्मिक, एक्चुअल धार्मिक कौन है? जो धर्म का पालन करता है। धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म जो है धी धातु से बना है, धारण करने योग्य। धारण करने योग्य क्या है? क्या धारण करना चाहिए, किस चीज को धारण करना चाहिए? धारण करना है शास्त्रों में दिए गए भगवान के वचन के द्वारा कर्तव्य का पालन, टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज एज गिवन इन शास्त्रास इंस्ट्रक्टेड बाय सुप्रीम लॉर्ड। जो भगवान ने वचन कहे हैं, जो भगवान ने आदेश दिए हैं, जो भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उनका पालन करना है, वो धर्म है। अब यहां चर्चा आ रही है बड़ी सुंदर, इसको हमें समझना चाहिए। शुक्राचार्य जी को समझ में आ चुका है कि ये जो बालक प्रकट हुआ है, जो तीन बग भूमि मांग रहा है, ये कौन है? समझ में आया कि नहीं आया? उन्होंने कहा नहीं, कहा साक्षात विष्णु है, तेरा सब कुछ हर लेंगे, तो क्या करेगा? उनकी समझ में आ गया, गुरु है। परंतु बलि महाराज का भी एक कर्तव्य है, राजा है, राजा का कर्तव्य है कि अगर कोई याचक आता है तो उसकी याचना को देखना, क्या वो जस्टिफाइड अप टू दी मार्क है। हाँ वो कह रही मुझे 20,000 रुपए दे दो, मैंने शराब पीनी है तो आप नहीं दोगे। वो कह मुझे 20,000 चाहिए, लड़की की शादी करनी है तो आप दे दो, चल भी लड़की की शादी कर ले। मतलब शास्त्र के अनुसार जो है आप देखते हैं कि जो उस कार्य के लिए धन की इच्छा हो रही है वो जेन्युइन है कि जेन्युइन नहीं है। तो वचन दिए जाने हैं, दे दिया, जो मांगोगे मिलेगा, मेरे पास सब कुछ है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। वचन किसको दिया है, किसको दिया है? बहुत सुंदर चर्चा है ये, दो लाइनें जो है ये 35वें श्लोक की बहुत बड़ा मैसेज देती है, बहुत बड़ा मैसेज देती है। अगर उसको ध्यान से सुने, ध्यान से सोचे, ध्यान से समझें, तुम निश्चित रूप से अपना वचन पूरा करने में असमर्थ होगे, ये गुरु ने बता दिया। तुमने वचन दिया है परंतु यू विल फेल, तो पूरा नहीं कर पाओगे, दिस इज गारंटेड। और मैं सोचता हूं अपनी इस असमर्थता के कारण तुम्हें नरक में शाश्वत निवास करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। वचन दिया जा रहा है भगवान, अब वचन टूट जाता, वचन पूरा नहीं हो पाता, या वो तो मैंने कह दिया था ऐसे ही, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, परंतु उसका रिजल्ट क्या है? नरक ही लिखा है ना, भागवतम यही कह रही है ना, शुक्राचार्य जी यही कह रहे हैं ना उसे बलि महाराज से। हम भी देखते हैं भक्त जाते हैं भिक्षा लेने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रॉमिस हो जाता है भगवान के सामने, प्रॉमिस हो जाता है, घर जाके प्रॉमिस फेल। मैंने कह तो दिया था पर मैंने देखा मेरी हालात ठीक नहीं है, मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, आप जो है थोड़ा कम में कॉम्प्रोमाइज कर, आप कम में कॉम्प्रोमाइज कर। मैंने आपसे जो है एक कलश बुक कर दिया था 31,000 रुपए का, अब ऐसा है आप 11,000 वाला कर दो, 5100 वाला कर दो, 31 वाला प्रोग्राम कैंसिल। वचन तुमने किसको दिया था? भगवान के भक्त को। किसके लिए दिया था? भगवान की सेवा के लिए। और अब जो है तुम वचन में फेल हो रहे हो तो रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? ना। ये बात लोगों की समझ में नहीं आ। चलिए ये तो धन की बात हो गई, और बहुत सी सेवाएं, सेवाओं की कमी है क्या? परसों गौर पूर्णिमा हुई है, कोई एक ही सेवा थी क्या? दसों सेवाएं थी। अब किसी सेवा के लिए कमिट कर दिया और बाद में उस सेवा से नाट गए, नहीं जी मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल है। अरे भाई तुमने किस सेवा के लिए हाथ खड़ा दिया था? अरे मैंने तो आपसे कहा था कि मैं जूता सेवा कर लूंगा, अब नहीं मैं तो मंदिर में रहना चाहता हूँ ठाकुर जी के सामने, जूता सेवा मुझसे नहीं हो पाएगी। रिजल्ट आएगा क्योंकि आपने भगवान के सामने वचन दिया है, भगवान के भक्त को वचन दिया है, गुरु के रिप्रेजेंटेटिव भगवान के रिप्रेजेंटेटिव को वचन दिया है। अगर आप वचन को तोड़ते हैं तो आपके लिए उसका रिजल्ट पॉजिटिव में नहीं। One has to consider very carefully, बहुत carefully करना पड़ता है, क्योंकि जब आप वचन दे रहे हो तो आपने संकल्प किया, determination है कि yes I will do this service, परंतु आप उस सर्विस को छोड़ देते हो या नकार देते हो या उससे अलग हो जाते हो, even that produces a negative। अब आदि चर्चा कि विद्वान व्यक्ति उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसमें किसी की जीविका खतरे में पड़ जाए। इसीलिए देखिए दो तरीके हैं। अगर गृहस्थ है तो उसको देखने जाइए कि मेरे लिए एसेंशियल क्या है। गृहस्थी भी तो चलाना है, ये तो लिखा जा रहा है पांच भागों में बांटने के लिए। रूप गोस्वामी ने चार भागों की बांटने की चर्चा करी कि मुझे जीविका भी चलानी है, परिवार भी चलाना है, गृहस्थी भी चलानी है, तो मुझे उतना दान करना चाहिए जितना कि गृहस्थी चलाने के बाद मेरे पास संभव हो। एक शर्त है, उसमें कंडीशंस अप्लाई। गृहस्थी चलाने के लिए असेंशियल अमाउंट ऑफ मनी जो कि बहुत जरूरी है, और गृहस्थी कृष्ण भावना भावित हो। मैं तो गृहस्थी चलाता हूं कि रोज शाम को मुझे 5,000 रुपया चाहिए क्लब में जाने के लिए, तो दैट इज नॉट गृहस्थी। वो गृहस्थी नहीं है, वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है कि गृहस्थ जो है कृष्ण भावना भावित हो, कृष्ण की सेवा करता हो, और उसको चलाने के लिए जो असेंशियल अमाउंट ऑफ मनी है, जो बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी कृष्ण भावना आगे बढ़े, आप और एडवांस करें कृष्णा कॉन्शियसनेस में, और एडवांस करें भगवान की भक्ति में, दैट इज वांटेड। आप कहो जी मेरा तो कम से कम 25 करोड़ का पैकेज होना चाहिए, मेरी गृहस्थी उससे कम चलती नहीं। मेरा तो 2 करोड़ का पैकेज होना चाहिए, उससे कम मेरी गृहस्थी चलती नहीं। तो भाई 2 करोड़ के पैकेज में तू करेगा क्या? What will you do? एक काम करेगा, भक्ति से विमुख और इंद्र तृप्ति के सम्मुख। उसको क्या चाहिए? सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो यहां पर बात हो रही है कि दान उतना हो जितना कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने परपट में लिखते हैं कि व्यक्ति को अपनी आय का 50% जो है कृष्ण भावनामृत में लगा देना चाहिए। क्या पॉसिबल है? अगर आपसे कहें कि आप जो है 50,000 कमा के लाओ और 25,000 यहाँ राधिका रमन जी के सामने रख दो और 25,000 घर लेके जाओ, तो आप आना ही बंद कर दोगे, जाना ही बंद कर दोगे। छोड़ो जी, वहां जाएंगे तो भक्तगण कहेंगे लाओ जी 50%, मेरा तो गुजारा नहीं चलता है, मैंने आना बंद कर दिया, मैं नहीं जाता। जाऊंगा तो आंखें नीची रहेंगी, मुख दिखा नहीं पाऊंगा, कर पाऊंगा नहीं, इसलिए जाओ नहीं। फिर आती बात की कहीं कहीं चर्चा आती है कि अपनी आय का 10% आज की तारीख में आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस में खर्च करना चाहिए। उस 10% के लिए भी कुछ लोग जो है राजी हैं और कुछ लोग राजी नहीं। ये तो एक बात हुई, या तो आया धन। भगवान की सेवा के लिए तन भी तो इस्तेमाल होता है, तन मन धन चाहिए ना, 3 चीजें चाहिए। मन आपका है, यस मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं सेवा करूंगा, प्रभु जी मुझे सेवा दो, चैंटिंग करता हूं, हे राधा मुझे भगवान कृष्ण की सेवा में लगाइए, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। धन सेवा एक अलग बात हो गई। अब भाई तन सेवा की बात, तो तन सेवा भी आपका 10% कम से कम भगवान की सेवा में इस्तेमाल होना चाहिए। कैलकुलेट करिएगा कि 1 महीने के अंदर अगर 30 दिन हैं तो मुझे 3 दिन अर्थात 72 घंटे भगवान की सेवा में लगाने हैं तन से। I have to do some practical सेवा, जैसे कि मेरे 72 घंटे जो है भगवान की सेवा में लग सके। 50% तक ले जाए तो अति उत्तम बात है, 100% ले जाए तो अति उत्तम बात है, बट मिनिमम 10% होना चाहिए। परंतु यहां जो है चर्चा आ रही है कि आपको क्या कार्य करने हैं, 5 5 भागों में विभाजित कर दे, धर्म के लिए, यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए और कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए। ऐसा व्यक्ति इस लोक में तथा परलोक में भी सुखी रहता है। शुक्राचार्य जी बलि महाराज को गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके पास जो एम्पायर है, जो धन है, उसको आप 5 भागों में डिवाइड करिए। एक भाग धर्म के लिए, धर्म की हमने अभी चर्चा करी। दूसरा भाग यश के लिए, कैसा यश चाहते हैं आप, किस प्रकार का यश बताइए। तो भाई लिखते हैं, 1 part for religion, 1 part for reputation। किस प्रकार की रेपुटेशन चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ रेपुटेशन। रेपुटेशन इन किस तरह की रेपुटेशन। बलि महाराज की बात कर रहे हैं हम, उसके उस रेफरेंस में आज के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अगर आप मान और बढ़ाई की चिंता करते हैं, अमानी में मानी दे, अपने मान की चिंता करनी, अपना रेपुटेशन तो चाहिए नहीं भाई, अपना रेपुटेशन नहीं चाहिए। ऐसा है जी कि मैंने ना, वो मेरे पास कमेटी वाले आए थे, उन्होंने कहा दान दीजिएगा, मैंने 2 lakh rupees दिए और रावण के पेट में तीर मैं मारूंगा, मेरी बड़ी रेपुटेशन है, फोटो लग गई है, नाम छप गया, फोटो लग गई है पोस्टर्स में, होर्डिंग्स में, नाम छप गया है मेरा, नीचे लिख दिया है मुख्य दान करता, ये मुख्य दान देने वाले हैं, तो क्या वो ठीक है बताइए। कैसा है, तो कैसा दान चाहिए, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युत्कार की आशा के बिना समुचित कार्य स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो दान सात्विक कहलाता है। अब यहां प्रश्न ये है कि योग्य व्यक्ति कौन है, योग्य व्यक्ति कौन है,
जो मान सम्मान की इच्छा ना करे, इंद्र
तृप्ति करने वाला या भगवान की सेवा करने वाला, कौन योग्य है। आपने दान दिया, उसने जाके सामने आपके दारू की बोतल खरीद ली और पीने बैठ गया, क्या वो योग्य है, या योग्य वो है जो दान लेता है और भगवान की सेवा में लगा देता है। अब 2 options, 2 आपको ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन ठीक है दारू पीने वाला, या दूसरा ऑप्शन ठीक है जो भगवान की सेवा में लगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन हैज टू चूज कि मुझे दान किसको देना चाहिए, हु इज द राइट पर्सन वेयर आई शुड मेक डोनेशंस। तो दान जो है आपका सात्विक होना चाहिए। अब आपको यश चाहिए, तो यश में भी एक प्रॉब्लम है। प्रभु जी मैंने 5 lakh rupees दिया है, बाहर मेरा पट्टी लग जानी चाहिए कि मैंने दिया था पैसा, यश हो गया ना, यश हो गया कि नहीं हो गया। शास्त्र कहता है कि दान देने के लिए आपके अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि दाएं हाथ से दान दे तो बाएं हाथ को पता ना लगे, दाएं हाथ से अगर दान देते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं लगता कि कुछ दे दिया। और यहां क्या है कि दान दिया है तो मेरी पट्टिका बाहर लगनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए वहां पर, राशि दान नहीं होगा। तो आपको यश ऐसा भी नहीं चाहिए। प्रभु जी मैंने ना मंदिर में गया था, वहां पर मैंने देखा बड़ी गर्मी है, तो मैंने 10 पंखे लगवा दिए और हर पर पे उसका नाम लिखा हुआ, पंखे के हर पर पे उसका नाम लिखा हुआ। अरे भाई पंखे लगवा दिए तो लगवा दिए, बात खत्म हुई नहीं। नहीं उस पर जब घूमता घूमता जरा नाम दिखाई देता क्या? जब पंखा घूमता है तब तेरा नाम दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, परंतु जब रुका है तब तो दिखता है ना। लाल रंग से होना चाहिए, लाल रंग से, काला रंग नहीं लगाना, लाल रंग लगाना, क्योंकि काला रंग अशुभ होता है, लाल रंग अशुभ होता है। यश चाहिए, ऐसा यश नहीं चाहिए, ऐश्वर्य के लिए, ऑपुलेंस। कैसा ऐश्वर्य, किस तरह का ऐश्वर्य चाहिए? लक्ष्य एक है, लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। लक्ष्य कृष्ण प्रेम है कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए आपको एक ऐश्वर्य चाहिए। ऐश्वर्य उसमें आपको धन खर्च करना, वो कैसा ऐश्वर्य होना चाहिए, किस तरह का ऐश्वर्य चाहिए? ये बड़ा ऑपुलेंट है जी, बड़ा अमीर है, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं, बढ़िया बैंगलो है, बढ़िया फार्म हाउस है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जहाजों में सफर करता है, बड़ा ऑपुलेंट व्यक्ति है, उसके लिए पैसा खर्च करता है। आपको भी ऑपुलेंस चाहिए, पर कैसी ऑपुलेंस चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ ऑपुलेंस? कि अगर मैं बढ़िया चीज इस्तेमाल करता हूं तो अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। रथ यात्रा ऑर्गेनाइज हुई, प्रभु जी ने अनाउंसमेंट किया, जगन्नाथ जी को लेके आना है जी साहिबाबाद से। कौन कौन भगवान को वहां से यहां लाने के लिए, वापस छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी ऑफर करता है? 5 व्यक्तियों ने अपनी मर्सिडीज ऑफर कर दी। हमारी मर्सिडीज है, आप इसमें ले, हमारी ऑडी है, आप इसमें ले आइए। ऑपुलेंस है, परंतु किसके लिए है? भगवान की सेवा के लिए। आप भगवान के घर में अल्टर बनाते हो, बड़ा ऑपुलेंट बनाते हो। भगवान का अल्टर है, भगवान वहां पे विराजमान है, बड़ा ऑपुलेंट बनाते हो। आप भगवान की सेवा करते हो, बड़ी ऑपुलेंटली, ऐश्वर्य से करते हो। ऐश्वर्य मीन्स बढ़िया फ्रूट्स आएंगे, बढ़िया अगरबत्ती आएगी, बढ़िया जल हुआ, बढ़िया बर्तन होंगे, मतलब एवरीथिंग इज बेस्ट। आप भगवान की सेवा में लगा रहे हो, ऑपुलेंस चाहिए, आप उसके लिए धन चाहिए, परंतु ऑपुलेंस सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, ऑपुलेंस क्लब में जाके एंजॉय करने के लिए नहीं, ऑपुलेंस चाहिए भगवान की सेवा। अब इसके बाद चर्चा आती है इंद्र तृप्ति के लिए और कुटुंबी जनों के लिए। इंद्र तृप्ति 2 वैरायटी की है, 2 टाइप्स। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैं बलवानों में बल हूं और काम हूं। कैसा काम? कैसी कामनाएं, कैसी डिजायर्स? जो भगवान की सेवा के प्रति समर्पित हो। तो इंद्र तृप्ति जो है, इंद्र तृप्ति मीन्स आपको अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करना है। आंखें भगवान के दर्शन के लिए, कान भगवान की वाणी के लिए, जिह्वा भगवान के प्रसाद के लिए, बोलने वाला हिस्सा भगवान की लीलाओं का वर्णन करने के लिए, अर्थात आपको अपनी इंद्रियों को तृप्त करना है, परंतु भगवान के सेवा में, भगवान के प्रति। दूसरी वैरायटी है कि आप इंद्र तृप्ति कर रहे हैं केवल सेंसुअल एंजॉयमेंट के लिए, जिसमें भगवान बीच में कहीं भी नहीं है, इज नो वेयर, कहीं नहीं है बीच में। बीच में है केवल संसार, जिसमें कि एक से एक चीजें आपको अट्रैक्ट कर रही है, हर चीज आपको अवेलेबल है, आपके पास बस उसको एंजॉय करने के रिसोर्सेज होने चाहिए। यू शुड हैव रिसोर्सेज। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप इंद्र तृप्ति कैसी भी कर सकते हैं। परंतु इंद्र तृप्ति होनी चाहिए भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, उसके माध्यम से अपनी इंद्रियां तुष्ट हों, कि उनकी इंद्रियां तुष्ट होंगी तो मेरी इंद्रियां तुष्ट होंगी, उसके लिए, ना कि संसारिक भोगों के प्रति आकर्षण हो। और उसके बाद है कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए, जो हमारे ग्रस्त ग्रस्त होने के नाते परिवार का पालन पोषण करना आपकी जिम्मेदारी है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक ग्रस्त की बात आ रही है, एक ब्रह्मचारी है, मंदिर में है, सेवा करता है, ठाकुर जी उसकी केयर लेते ही लेते, वस्त्र मिलते हैं, सोने को स्थान मिलता है, भोजन भगवान का प्रसाद मिलता है, और कथा मिलती है, दर्शन मिलते हैं, और नाचने कूदने का कीर्तन करते हुए आनंद आता। परंतु जो गृहस्थ है उसके लिए जिम्मेदारियां हैं कि गृहस्थ को ब्रह्मचारी का भी, वानप्रस्थ का भी और सन्यासी का भी केयर लेनी, उसको परिवार की केयर और बाकी सारी जो सेवाएं हैं भगवान के प्रति जो सेवाएं हैं, या जो बाकी तीन आश्रमों के प्रति जो सेवाएं हैं, उसमें एक समन्वय बिठाना है, एक तालमेल बिठाना, एक सिस्टम बनाना है कि यस मेरा भजन भी चलता रहे, मेरी भक्ति भी होती रहे, और मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है उसमें प्रोग्रेस भी चलती रहे। तराजू के पलड़े के अंदर एक तरफ कृष्ण भावनामृत है और एक तरफ ये सारी चीजें हैं, उनमें आपको पलड़े की सुई बीच में रहनी चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए, ये कृष्ण भक्ति, कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसमें एडवांस होना, वो भी चलता रहे, सेटल रहे, एडजस्ट रहे बिल्कुल, और मेरी गृहस्थी भी जो है डिस्टर्ब ना हो, मेरी गृहस्थी भी चलती रहे। हमने देखा है और बहुत प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है कि जब समन्वय नहीं होता है तो पारिवारिक क्लेश हो जाते हैं, तालमेल बनाना जरूरी, झगड़े हो जाते हैं, डाइवोर्स तक हो जाते हैं। उनसे बचना है तो आपको एक कला आनी चाहिए कि मुझे तालमेल कैसे बनाना है, मेरी भक्ति भी चलनी चाहिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांसमेंट भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ मेरा भौतिक संसार में जो गृहस्थ लाइफ है वो भी बिल्कुल बैलेंस होकर चलती है। यहां जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य का मुख्य उद्देश्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में प्रगति हो जानी मतलब आपको कृष्ण के भाव में आना है, कृष्ण का भाव कैसा होना चाहिए, भाव तीन प्रकार के भाव हो सकते हैं, ब्रॉडली डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, ब्रॉडली या तो प्रेम का या वैर का, और ये ना प्रेम का ना वैर का, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल और वैर का एक समान ही है, परंतु मुख्य भाव क्या चाहिए, प्रेम का। भगवान के प्रति आपके प्रेम के भाव का अर्थ क्या है, है मेरा भाव, परंतु उसमें भी दो बातें, भाव तो है और प्रेम का भाव है, बट प्रेम जो है स्वाभाविक है, नेचुरल है या कंपल्सिव है, बल से मैं प्रेम कर रहा हूं, मुझे डंडा दे रहा कि नहीं सेवा कर, नहीं सेवा कर, नहीं सेवा, सेवा तो हो रही है परंतु क्या है, डंडे से हो रही है। वो सेवा डंडे से होनी चाहिए या प्रेम से होनी चाहिए, कौन सा भाव अच्छा है? प्रभुपाद जी लिखते हैं डिवोशनल सर्विस, फिर ऐड करते हैं डिवोशनल सर्विस विद लव। भाई अकेले डिवोशनल सर्विस से काम नहीं चलता था क्या? नहीं चलता था, इसलिए प्रभुपाद ने एम्फेसाइज किया कि डिवोशनल सर्विस कैसी होनी चाहिए, प्रेममयी सेवा, प्रेममयी अर्थात भाव आपका जो है भगवान के प्रति प्रेम का होगा। भगवान क्या कहते हैं, जो मेरे प्रति जैसा भाव रखता है उसको वैसी मैं रेसिप्रोकेट करता हूं। भगवान ने कहा भगवत गीता, ये था माम प्रदंते भयामी, जिस प्रकार से मेरा भजन करता है उसी के अनुरूप उसे फल देता हूं। अगर आपका भगवान के प्रति सेवा के प्रति प्रेम का भाव है तो भगवान भी आपसे प्रेम करेंगे, और भगवान प्रेम करेंगे इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। उसका को मैच है, उसका को मुकाबला है। भगवान से प्रेम चाहिए कि कंस स्मरण करता था, पर किस भाव से करता था? रावण स्मरण करता था, किस भाव से करता था? प्रेम का भाव नहीं। अब भगवान इतने दयालु हैं कि उनको भी उन्होंने असुरों को मोक्ष दिया जाओ कोई बात, परंतु भाव प्रेम का चाहिए, स्मरण प्रेम से होना चाहिए, सेवा प्रेम से होनी चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का मतलब क्या है कि आप दिन ब दिन ऐसे कार्य करेंगे कि आपका भगवान से प्रेम बढ़े। कृष्ण का भाव तभी आएगा ना जब आप भगवान के प्रेममयी सेवा करेंगे, तो भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा होगी तो आपका प्रेम का भाव बढ़ेगा, तो आप कृष्ण भावनावृत में प्रगति करेंगे। प्रभु जी ने सेवा में लगा दिया, मैं तो लगना नहीं चाहता था, पकड़ लिया मुझे, फांस दिया, मेरा तो मूड नहीं था, अब क्या करूं, करनी पड़ेगी, क्या करूं, करनी पड़ेगी। दूसरा व्यक्ति जाता है, अरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, कहिए प्रभु जी मैं भगवान की सेवा में लगना चाहता हूं। कौन सी सेवा? जैसे आप कहेंगे, कोई चॉइस तो नहीं है जी? कोई चॉइस नहीं है, जैसे आप आदेश देंगे वैसे सेवा करूंगा, और सेवा करके दिखाता है बिल्कुल एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय दी अथॉरिटी। अथॉरिटी ने इंस्ट्रक्शन दिया, उसने टस से मस नहीं हुआ, वैसे ही बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट वैसे ही सेवा करी बढ़िया तरीके से, तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? तो भगवान को कैसी सेवा चाहिए? अर्थात अगर भगवान प्रसन्न होते हैं तो आपकी कृष्ण भावनावृत में प्रगति है। असेसमेंट दो तरीके से होती है, एक तरीका कि अथॉरिटी कहती है कि आपकी सेवा बहुत अच्छी थी, कृष्ण बड़े प्रसन्न होंगे आपसे, आपने बहुत बढ़िया सेवा करी, मतलब अथॉरिटी इज प्लीज सो कृष्णा इज प्लीज। दूसरा तरीका है आपके ऊपर एक उसका रिजल्ट आता है कि जो बढ़िया सेवक होता है उसी को सेवा ज्यादा देते हो, जो सेवा ठीक से नहीं करता उसे आप इग्नोर करते हो। तो प्रश्न करते हैं लोग, प्रभु जी कैसे जाने कि भगवान हमसे प्रसन्न है? तो भगवान आगे तेरी पीठ तब तो भाई मैं तेरे से बड़ा खुश हूं, हाँ तब तो खुश होगा, तब तेरे को समझ में आएगी। नहीं, भगवान का पीठ थपथपाने का मतलब है भगवान आपकी सेवा से प्रसन्न होके आपसे प्रसन्न है तो आपको और सेवा मिल रही है। तो मोर सेवा यू गेट तो मोर डियर यू बिकम टू कृष्णा। जितनी सेवा ज्यादा मिलेगी इसका मतलब है भगवान प्रसन्न है, तभी आपको ज्यादा सेवा मिल रही है। भगवान प्रसन्न ना होते तो आपको सेवा के लिए नहीं, आप ठीक नहीं करते हो बाहर बैठो चलो आप सेवा नीचे जाइए, आपको सेवा नहीं मिलेगी। तो कृष्ण भावनावृत में प्रगति करने का अर्थ यह है कि आपको भगवान की सेवा अधिक से अधिक मिल रही है तो आपका भगवान के प्रति भाव बढ़ता चला जा रहा है। उसमें धर्म अर्थ तथा काम सम्मिलित होंगे, बिगनिंग है, दिस इज द बिगनिंग। और किंतु क्योंकि उसके परिवार के लोग भी कुछ लाभ की आशा करते हैं, बिकॉज एवरीबॉडी इज डिपेंडेंट ऑन यू, आपके ऊपर निर्भर है, तो कहते हैं कि हमारा भी भरण पोषण ठीक से होना चाहिए। आप उन पर खर्च करते हो, आप ये नहीं कहते ये ले भैया मेरी तो 50,000 तनख्वाह है, 25% तेरे को दे देता हूं, ये 12,500 पकड़ो जाओ मजे करो। नो, आपके भरण पोषण का मतलब है एज पर कृष्णा कॉन्शियसनेस के रूल्स, जो उन पे आधारित नियम हैं, जो उन पे आधारित इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके अनुसार आपका भरण पोषण होगा। आपको पढ़ाना भी है, आपको कपड़े भी देने हैं, आपको प्रसाद भी खिलाना है, आपकी और भी केयर की नीड्स हैं, उनकी केयर लेनी है, बट एवरीथिंग विल बी एज पर गृहस्थ, नॉट एज पर गृहनिधि। गृहस्थ के अनुसार होगा, मीन्स केंद्र में कृष्ण है, उसी के अनुसार सारे कार्य होंगे। आपका पर्व पोषण भी होगा, आपकी पढ़ाई भी होगी, आपके सब कार्य पूरे किए जाएंगे। ये नहीं कि आप मुझे 12,500 दिए जाओ भैया, जाओ मेरी 50,000 तनख्वाह है, ये लो 12,500, अब अपना भरण पोषण करो। और वो दो लड़के थे, गए और अपना जाके एक घंटे में 12,500 फूक के आए, फिर आ गए, पापा पैसे खत्म हो गए और चाहिए, और तो है नहीं बता सकूं। नो, कंट्रोल इज योर्स, बट एवरीथिंग इज कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंडेंट, हर चीज उसके ऊपर निर्धारित। तो यहां जो है रूपा जी ने बहुत बढ़िया बात लिखी है कि मनुष्य का उद्देश्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना है। दिस वन अंडरस्टैंड्स तो परफेक्ट है, अंडरस्टैंड नहीं करता है तो वो सड़क पे घूमता है। प्रभु जी मैं आती हूँ रोज भागवतम सुनने के लिए, माता जी बहुत अच्छा करती हैं, कहाँ रहती है, बड़ी दूर रहती हूँ, आती कैसे हैं, मेरे पति मुझे दरवाजे पर छोड़ जाते हैं, अंदर नहीं आते, और फिर मैं मिस कॉल देती हूँ तो मुझे दरवाजे से ले जाते, फिर अंदर नहीं आते। ऐसा व्यक्ति जो मंदिर के सामने आके मंदिर के अंदर नहीं आता, कैसे बोलने वाला, उसको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सोचिए जरा। परसों गौर पूर्णिमा गई है, एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूं समाप्त करने से पहले। अगर आपने किसी को बुलाना है, व्यक्ति दूर खड़ा है, तो आप कैसे बुलाओगे, प्लीज आइए, हाथ ऊपर करके बुलाओगे ना, ऐसे ही बुलाते हो ना। गौरान प्रभु नित्यानंद प्रभु हाथ खड़े करके आपको बुला रहे हैं और आप आने को तैयार हैं, यू आर नॉट कमिंग। वो कह रहे हैं आओ, भगवान की भक्ति में लगो, भगवान की सेवा में लगो, भगवान का प्रेम प्राप्त करो, परंतु आप आने को तैयार नहीं है। आपको मालूम ही नहीं है कि मंदिर के अंदर जाने के बाद मेरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, होता है। मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं शाम को यहाँ कहा कर रहा था सैटरडे इवनिंग क्लास में, तो फैमिली आई 9 बजे, अंदर आई, दर्शन बंद हो गए, कथा में बैठ गई, 9:30 बजे हमारे पास आए जी, मैं तो ऐसा है जी राधा स्वामी हूँ, मेरे बहुत दिन से आगे से निकलता था, आज मन में आया चलो दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने आ गए, दर्शन बंद, कथा में बैठ गए, तो थोड़ी सी चर्चा हुई, उसके बाद वो रेगुलर विजिटर हैं टेंपल के, शायद कुछ उन्होंने लाइव मेंबरशिप भी लिया होगा, और मैं तो उसके बाद मेरा लिंक नहीं रहा, बट मुझे लग रहा था कि उनका जो भाव था उसमें एक रेगुलरिटी आ गई होगी कि एक बार मंदिर के माहौल और जो है और जो जो यहाँ का तेज है, जो यहाँ का और है, सड़क का अलग है और मंदिर के अंदर का अलग है, उस और से ही इफेक्ट आ जाता, उसी से असर आ जाता। ये बात हमने कैसे समझी कि वृंदावन में एक महात्मा जी रोज रात को परिक्रमा करते थे 3 बजे से पहले, और कृष्ण कृष्ण जपते रहते थे, भगवान के नाम को जपा रहे, कृष्ण कृष्ण जपते रहते थे। एक दिन जो है उनके मन के अंदर आया कि यहाँ धर्मशाला बननी चाहिए और भंडारा होना चाहिए, और उन्होंने अपने को 2 चांटे मारे कि मेरे मन में से कृष्ण निकल के धर्मशाला कैसे आ गए। तो क्या देखते हैं कि 50 कदम दूर एक लाला आ रहा है, वो लाला लोग जो है धर्मशालाएं बनवाते हैं, लाला लोग जो है भंडारे करवाते हैं, उसका ऑरा, उसका इफेक्ट, उसके परमाणु वो वहां से अटैक कर रहे हैं, और माइंड चेंज हो गया, चेंज हो गया। इसलिए जो है मंदिर में आने के बाद जो यहाँ का ऑरा है, दैट इज ट्रांसेंडेंटल, चाहे दर्शन खुले हों चाहे ना खुले हों, दैट इज स्टिल ट्रांसेंडेंटल, उसको उसको फील होता है, फील हम लोग कहते हैं वृंदावन जा रहे हैं, क्या जी बैटरी चार्ज करने जा रहे हैं, कि बैटरी चार्ज हो रही है। ऐसे ही जब एक व्यक्ति जो है मंदिर आता है तो उसकी बैटरी चार्ज होती है, तो मंदिर आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए और कृष्ण भावनावृत में प्रगति कैसे करनी है इसका ज्ञान लेना चाहिए, इसकी इंस्ट्रक्शन लेनी चाहिए। हरे कृष्णा, श्री गोपाल की बताई गौर प्रेमानंदे।